प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, पवित्र शास्त्र बाइबल का गहराई से अध्ययन करने के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई गूढ़ बातों को जान सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाइबल का विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आइए आज के प्रवचन को आरम्भ करें।
श्रोता भाई बहनों को प्रभु मसीह के मधुर नाम में हमारा हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और प्रतिदिन हमारे सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हमने आपके पत्रों को भी पढ़ा है। हम आपके पत्रों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि पत्रों का ये सिलसिला निरंतर बना के रखें ताकि हम आपके विषय में उचित जानकारी प्राप्त कर सकें और साथ ही आप हमें पत्रों के द्वारा अपने प्रश्न, अपने संदेह भी लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता कार्यक्रम के अंत में बताया जाता है। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने और अपना भी पता जब आप पत्र लिखते हैं तो साफ साफ लिखें ताकि हम आपके साथ सही ढंग से पत्र व्यवहार कर सकें। जब आप कार्यक्रम सुनते हैं तो पत्र को लिखना ना भूलें और साथ ही आप निरंतर कार्यक्रम को सुनते रहें। हमें आशा है कि आप इस कार्यक्रम से लाभ उठाते हैं और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम पुराने नियम से आमोस नबी की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने इसके तीसरे अध्याय को समाप्त किया और आज हम इसके चौथे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आमोस नबी की पुस्तक का मुख्य विषय पाप का न्यायोचित दंड है, अर्थात परमेश्वर पाप को दंड देता है, हम इस अध्याय में इसराइल के पाप तथा उसके दंड के विषय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय से आरंभ करके छठवें अध्याय तक हम विशेष रूप से इसराइल के उत्तरी राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्याय चार हमको बताता है कि परमेश्वर ने बीते समय में इसराइल के पाप का किस रूप में दंड दिया, अर्थात इसराइल को उसने किस ढंग से दंडित किया। अध्याय पांच उनके भविष्य के दंड के विषय में बताता है और अध्याय छह में आमोस नबी वर्तमान पीढ़ी को पाप से बचने और उससे दूर रहने के लिए चेतावनी देता है। सो इस प्रकार पुस्तक का एक खंड हमारे लिए व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और जितना ये आमोस के समय में इसराइल के 10 गोत्रों के लिए महत्वपूर्ण था उतना ही यह वर्तमान में भी हमारे लिए उपयोगी तथा व्यवहारिक है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस अध्ययन में रुचि लें और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि आपको परमेश्वर के वचन से चेतावनी प्राप्त हो, आप अपना मूल्यांकन कर सकें और प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, साथ ही परमेश्वर के परिदृश्य को और परमेश्वर के स्वभाव और उनकी मांग को समझ सकें और उसे पूरा कर सकें। अब जबकि आमोस नबी परमेश्वर के लोगों को वापस लौटने की चेतावनी देता है, वह व्यंगात्मक शैली का प्रयोग करता है। सो आइए इसी संक्षिप्त परिचय के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम आरंभ करें अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी, सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें और आपके विषय में उचित जानकारी प्राप्त कर सकें, आपके उद्धार के कार्यक्रम को जान सकें, ये भी जान सकें कि आप पाप को दंड देने वाले परमेश्वर हैं। प्रेमी पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक और व्यवहारिक बना दें ताकि हमारे श्रोता भाई बहन उस पर विश्वास कर सकें, उसे ग्रहण कर सकें और अपने सृष्टिकर्ता, अपने उद्धारकर्ता और अपने जीवनदाता परमेश्वर को पहचान सकें और उसकी उपासना कर आपके साथ संगति और सहभागिता स्थापित कर सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वागत मित्र, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए आमोस नबी की पुस्तक जो पुराने नियम में है, उसका चौथा अध्याय। आमोस चौथा अध्याय, उसके 1-4 पदों को आप हमारे साथ देखें। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, हे बाशान की गायो, तुम जो सामरिया के पर्वत पर हो, यह वचन सुनो। तुम जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचलती हो और अपने अपने पति से कहती हो, लाओ कि हम पिएं। प्रभु यहोवा ने अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहा है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं जब लोग तुम्हें कांटों से, हां तुम में से बचे हुओं को मछली की बंसियों से फंसा कर खींच ले जाएंगे। तुम में से प्रति एक दीवार की दरारों में से अपने सामने सीधे निकल जाओगी और हरमोन में फेंक दी जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। बेतेल में जाकर अपराध करो, गिलगाल में जाकर और अधिक अपराध करो, प्रति भोर अपने बलिदान और हर तीसरे दिन अपने दशमांश लाया करो, धन्यवाद बलि खमीरी आटे से भी चढ़ाओ, स्वेच्छा बलियों की घोषणा करो, उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इसराइलियो, ऐसा करना तुम्हें पसंद है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैंने आपके समक्ष 1-5 पदों को पढ़ा है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। प्रथम पद में हमने पढ़ा कि हे बाशान की गायो, तुम जो सामरिया के पर्वत पर हो, ये वचन सुनो। प्रिय मित्र, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर इसराइल की तुलना बाशान की गायों से करते हैं। बाशान एक स्थान है जो यर्दन नदी के पूर्व में गिलियाद पर्वतों तथा हरमोन पर्वतों के मध्य पाया जाता है और ये एक उपजाऊ घाटी है। यहाँ पर सुंदर चरागाह हैं और इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक पशुपालन किया जाता है। ये इसराइल के 3 गोत्रों द्वारा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बसाया हुआ स्थान है। यहाँ उत्तम चरागाह हैं और ये स्थान पशुपालन के लिए उपयुक्त व प्रसिद्ध स्थान था। यहाँ की गायें अन्य गायों की तुलना में मोटी और आकर्षक दिखाई देती थीं। इसराइल के 3 गोत्र यर्दन नदी को पार करने की अपेक्षा यर्दन नदी के पूर्व में ही स्थिर हो गए। उन्होंने वहीं अपने स्थान चुन लिए और बस गए। उन्होंने इसे बसाया और यहां पर पशुपालन किया। प्रभु परमेश्वर सामरिया की प्रजा और इसराइल प्रजा को बाशान की गाय कहकर संबोधित करते हैं। आमोस इसराइल के शासकों पर व्यंग करता है, उन्हें बाशान की गाय कहकर संबोधित करता है। वो कहता है, हे बाशान की गायो, तुम जो सामरिया के पर्वत पर हो, ये वचन सुनो कि गाय क्या करती हैं। तुम जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचलती हो और अपने अपने पति से कहती हो, लाओ कि हम पिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आमोस ने इसराइल के शासकों को बाशान की गाय क्यों कहा है, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा ही हो गया था। अब उनके लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंग शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि वे लोग समलिंगी हो गए थे। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता समलिंगियों को दंड देता है। ये कार्य परमेश्वर से विद्रोह है। ये कार्य परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। समलिंगी होना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। ये प्रत्येक व्यक्ति व राष्ट्र के पतन का कारण भी है। आमोस ऐसे लोगों के विरुद्ध दंड की घोषणा करता है। वह इसराइल के विरुद्ध दंड की घोषणा करता है। वह उन्हें बाशान की गाय कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे समलिंगी हो गए हैं। इतिहास साक्षी है कि अश्शूर के राजा ने इसराइल को बंदी बनाकर उनके देश से पृथक कर दिया और भिन्न भिन्न स्थानों में ले जाकर बसा दिया। वे यथाशब्द तितर बितर कर दिए गए, जैसा कि प्रभु का वचन हमें बताता है। यहां दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा ने अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहा है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं जब लोग तुम्हें कांटों से, हां तुम में से बचे हुओं को मछली की बंसियों से फंसाकर खींच कर ले जाएंगे। तुम में से प्रत्येक दीवार की दरार में से अपने सामने सीधे निकल जाओगी और हरमोन में फेंक दी जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। और मेरे मित्र, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार इनके साथ व्यवहार किया और अश्शूर के राजा ने इस वचन को पूर्ण किया। तब चौथे पद में हमने पढ़ा कि बेतेल में जाकर अपराध करो। अब यहां पर आमोस नबी बड़ी व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो व्यंग में कह रहा है कि बेतेल में जाकर अपराध करो, गिलगाल में जाकर और अधिक अपराध करो। इस प्रकार वह उनके पापों को उजागर कर रहा है। बेतेल वो स्थान है जहां उन्होंने सबसे पहले प्रतिमा पूजा प्रारंभ की थी। यही उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर यहोवा के नाम से उसकी पूजा प्रारंभ की थी। यारोबाम राजा ने सोने के बछड़े को बेतेल ही में स्थापित किया था। वह प्रजा को यरूशलेम जाने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने बेतेल में सोने का बछड़ा स्थापित किया और उनसे कहा कि यही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है जो तुम्हें मिस्र से छुड़ाकर लेकर आया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं गिलगाल को, गिलगाल में जाकर और अधिक अपराध करो। ये भी व्यंगात्मक वचन है। गिलगाल का अर्थ है घेरा या चारों ओर लुढ़कना या चक्कर लगाना। गिलगाल वह प्रथम स्थान है जहां वे यहोशू के नेतृत्व में यर्दन नदी को पार करके पहुंचे थे। ये स्थान उनके लिए एक पवित्र स्थान था क्योंकि सर्वप्रथम वे इसी स्थान पर पहुंचे थे। उसके पश्चात वह प्रतिमा पूजा का केंद्र बन गया। आमोस उन पर व्यंग कर रहा है कि जो तुम्हारे पवित्र स्थान थे, आज तुमने उन्हें अपराध और पाप का केंद्र बना दिया है। जाओ जाओ गिलगाल और बेतेल में, उसके पवित्र स्थानों में खूब पाप करो, जी भरकर पाप करो, क्योंकि तुम्हें यही भाता है। ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार है कि तुम परमेश्वर के पवित्र स्थानों में जाकर पाप करो। ये उनके पतन की चरम सीमा है। मित्रवर, आज भी हम ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो पवित्र स्थानों में पाप करते हुए नहीं लजाते। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं। परमेश्वर का वचन उन्हें भी चेतावनी देता है। आज अनेक लोगों ने कलीसिया के आराधनालयों और कलीसिया की सभाओं को पाप का केंद्र बना लिया है। परमेश्वर उनको भी ऐसे ही व्यंगात्मक ढंग से निमंत्रण देता है, आओ खूब पाप करो किंतु दंड के लिए तैयार रहो। आमोस नबी कहता है कि वे खमीरी आटे से बनी रोटियां धन्यवाद बलि के लिए प्रयोग करने लगे थे। पांचवें पद में लिखा है, धन्यवाद बलि खमीर आटे से भी चढ़ाओ, जबकि ये वर्जित था। खमीरी आटे को धन्यवाद बलि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था, किंतु इसराइल प्रजा इस कार्य को करती थी। इसलिए आमोस नबी व्यंगात्मक ढंग से कहता है कि धन्यवाद बलि खमीर आटे से भी चढ़ाओ, तुम्हें तो ये सब कुछ भाता है। वे इतने उदारवादी हो गए थे कि उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर और सम्मान और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयास करना उचित नहीं समझा। वे उदारवादी हो गए थे। आज भी इसी प्रकार के उदारवादी लोग हमारे मध्य में रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन की पवित्रता को नहीं मानना चाहते, उसको बनाए रखना नहीं चाहते, वे अपने ही ढंग से कार्य करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल में खमीर बुराई का प्रतीक है और परमेश्वर ने इसे वर्जित ठहराया है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक का सातवां अध्याय धन्यवाद बलि से संबंधित नियमों के विषय में हमको बताता है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक के सातवें अध्याय के बारहवें तथा तेरहवें पदों को आप हमारे साथ देखिए, जहां पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमें स्वयं को परमेश्वर के समक्ष पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक सातवां अध्याय, ये पुराने नियम में है, सातवां अध्याय बारह और तेरह पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने तथा भलीभांति गूंधे हुए मैदे के फुलके चढ़ाए। धन्यवाद की मेल बलि के चढ़ावे के साथ वह खमीरी रोटियां भी चढ़ाए। अब यहां प्रभु का वचन हमारे सामने स्पष्ट है कि धन्यवाद बलि अखमीरी आटे से बनाई जाए और चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां तेल से सने हुए मैदे से तैयार की जाए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि हमें स्वयं को परमेश्वर के समक्ष पवित्र और भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र रहें, अर्थात वे जो परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर के भक्त हैं और परमेश्वर के चुने हुए और पृथक किए हुए लोग हैं। पवित्र पात्र का अर्थ है परमेश्वर की सेवा के लिए पृथक किए हुए पात्र। इसलिए परमेश्वर पिता ने ये नियम उनको दिया कि वे पवित्रता के साथ कार्य करें, किंतु उन्होंने परमेश्वर की इस पवित्रता को अपवित्रता में बदल दिया। उन्होंने धन्यवाद बलि को खमीरी रोटी के साथ चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, इसलिए परमेश्वर उनके विरुद्ध है। तब 6-11 पदों को हमारे साथ देखिए, जहां लिखा है, यद्यपि मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांतों की सफाई और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की कमी की, फिर भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। फिर मैंने वर्षा को तुमसे रोक रखा जबकि कटनी के लिए केवल 3 माह शेष थे। फिर मैंने एक नगर पर तो वर्षा भेजी, पर मैंने दूसरे पर वर्षा ना भेजी। एक भाग पर तो वर्षा हुई जबकि दूसरा भाग जिस पर वर्षा नहीं हुई सूखा रह गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग एक दूसरे नगर में भटक कर पानी पीने के लिए आए, परंतु वे तृप्त न हुए, फिर भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हें लू और गेरुई से मारा और इल्लियां तुम्हारी बहुत सी वाटिकाओं, दाख की बारियों तथा अंजीर और जैतून के वृक्षों को चट कर गईं, फिर भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। जैसी महामारी मैंने मिस्र में भेजी थी वैसी ही तुम पर भी भेजी। मैंने तुम्हारे जवानों को तुम्हारे लूटे हुए घोड़ों सहित तलवार से घात किया। मैंने तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे नथनों में भर दी, फिर भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। जैसे मैंने सदोम और अमोरा को उलट दिया था वैसे ही तुम्हें भी उलट दिया। तुम आग की लपट से निकली हुई लकड़ी के समान थे, फिर भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। प्रिय मित्र, इन पदों में परमेश्वर पिता इसराइल को उनके पाप और दंड के विषय में बता रहे हैं, साथ ही वे उनके मन की कठोरता के विषय में भी बता रहे हैं। हमने यहां पर बहुत सी बातों को पढ़ा। परमेश्वर ने उनको कष्ट दिया, उनके सामने समस्याओं को खड़ा किया, उन पर क्लेश डाले, और परमेश्वर ने चाहा कि इन समस्याओं और क्लेशों के परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के समीप आएं, अपना मन फिराएं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की ओर अपना मन नहीं फिराया, वरन वे निरंतर कठोर ही होते गए। श्रोता, उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी और ताड़ना पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी ओर अपना मन नहीं फिराया। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ताड़ना देता है, जिन्हें परमेश्वर कष्ट और पीड़ाओं में जाने देता है। परमेश्वर पीड़ाओं को अनुमति देता है कि वे उनके जीवन में प्रवेश करें। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वे लोग अपना मन परमेश्वर की ओर फिराएं, अपने बुरे कार्यों से फिरें, अपने अधर्म से फिरें और अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर के समीप आएं, उसके साथ अपने संबंधों को मधुर बनाएं, उसकी संगति और सहभागिता में रहें। किंतु वे लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। प्रभु के वचन में हमें स्पष्ट रूप में बताया गया है कि तू परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना समझना। परमेश्वर अपनी ताड़ना इसलिए भेजता है कि वह हमें अपनी पवित्र सहभागिता में लेना चाहता है। किंतु अनेक लोग हैं जो परमेश्वर की ताड़ना पर कोई ध्यान नहीं देते। वे अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं फिराते, वरन परमेश्वर के विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं। वे परमेश्वर के विरोध में अपना मुंह खोलते हैं और वे और भी अधिक अपराध में गिरते हैं, और भी अधिक पाप में फंसते जाते हैं और परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं। तब 12वें पद में हम परमेश्वर पिता के व्यवहार के विषय में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, इस कारण हे इसराइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, क्योंकि तूने अपना मन नहीं फिराया। तू मेरी ओर से कठोर हो गया है, मैं भी तेरी ओर से कठोर हो जाऊंगा। परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं भी दंड देते समय तुम्हारे समान ही कठोर बन जाऊंगा। मेरे मित्र, परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा, ये उनके लिए एक रहस्य है। किंतु पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता ने अश्शूर के राजा को अपने दंड का अस्त्र बनाया और वह उन्हें क्रूरता के साथ बंधुआई में ले जाएगा। यद्यपि इस विषय में यहां कुछ नहीं बताया गया है, ये एक रहस्य की बात है, किंतु आने वाले समय में परमेश्वर ने इस वचन को पूरा किया और अश्शूर के राजा के द्वारा उन्हें दंड दिया। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता पाप की ओर से लापरवाह नहीं होता, उनकी ओर से आंख नहीं मूंद लेता। परमेश्वर पाप को मान्यता प्रदान नहीं करता। वह ऐसा नहीं करता कि अरे अब तो सभी लोग पाप कर रहे हैं, इसलिए छोड़ो, करने दो। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, परंतु मनुष्य ऐसा ही करता है। वह ये विचार करता है कि अब तो सभी लोग पाप कर रहे हैं, मैं भी पाप करूं, जो सबका होगा वह मेरा भी होगा। ये शैतान की ओर से है, किंतु मनुष्य ये नहीं जानता कि पाप का दंड भयंकर है, जो सहने की सारी सीमाओं से परे है। आप उस दंड को सहन नहीं कर सकते। पाप का दंड साधारण नहीं है, इसलिए आप ये कहकर अपने मन को संतुष्ट नहीं कर सकते कि जो सबका होगा वही मेरे साथ भी होगा, इसलिए छोड़ो, पाप करने दो। नहीं मेरे मित्र, परमेश्वर पिता पाप को दंड देता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में किए गए पाप को दंड देगा, वह अज्ञानता में किए गए पाप का भी दंड देगा, जैसा कि हम होशे नबी की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। किंतु जब हम परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओट में छिप जाते हैं, उनके पीछे छिप जाते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें मसीह यीशु में देखते हैं। वे हमें एक पापी के रूप में नहीं देखते, वे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और कहते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। श्रोता, यद्यपि मुझे मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होना है, किंतु अनंत जीवन का आश्वासन मेरे जीवन की महान आशा है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये देहाती प्रचारक आमोस हमें बताता है कि हमें जिस परमेश्वर के सामने खड़े होना है वह कैसा परमेश्वर है। आप भी सुनिए, 13वां पद देखें, देख वह जो पहाड़ों का सृजनहार है और पवन को उत्पन्न करता है और मनुष्य पर अपने विचार प्रकट करता है, वह जो भोर को अंधकार बना देता है और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलता है, उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। प्रिय मित्र, क्या आप इस परमेश्वर से भेंट करने को तैयार हैं, या आपके समक्ष परमेश्वर का कोई अन्य चित्र है? यदि आप भेंट करने को तैयार नहीं हैं, तो ये समय है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने आप को अपने इस परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से भेंट करने के लिए तैयार कर लें और उनके पुत्र मसीह यीशु की ओट में छिप जाएं। अभिनव वचनों के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को सुनने और हमें पत्र लिखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप में से कई श्रोताओं ने बाइबल पत्राचार अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है। जो श्रोता इस अध्ययन को करना चाहते हैं, वे कृपया हमें पत्र लिखें। याद रहे, अपना नाम और पता साफ साफ लिखें। पत्राचार अध्ययन के लिए जल्द से जल्द अपना नामांकन करवाएं। बाइबल पत्राचार अध्ययन के लिए हमारा पता है, BCC पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। यदि आप आज के बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्य वचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम सत्यवचन, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।